शांति, ओम शांति। अभी अभी हमने प्यारी मम्मा का दिन मनाया, आप सबने भी मनाया होगा, अपने अपने सेंटर पे मनाया होगा। तो मम्मा की बहुत सारी विशेषताओं को हमने याद किया, उसमें से एक मुख्य विशेषता, ये हम सबको मम्मा की बहुत प्यारी लगी कि वो 2 बजे उठ करके बाबा को याद करती थी, बहुत प्रेम से याद करती थी, खो जाती थी याद में, और उस याद में ही अपने में शक्तियां भरती थी, गुण भरती थी। तो हमको बाबा ने मुरली में कहा है, फॉलो फादर फॉलो मदर। तो क्या हम अपनी माँ को ठीक से फॉलो कर रही हैं? 2 बजे ना सही, 4 बजे उठ के बाबा को प्यार से याद करती हैं? कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात जिसके दिन की शुरुआत अच्छी होती है उसका सारा दिन बहुत बढ़िया गुजरता है। तो हमारी दिन की शुरुआत तो भगवान के साथ होती है, भगवान हमें उठाते हैं, जगाते हैं, फिर अपने साथ कनेक्शन जुड़वाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर ये बात आप दुनिया वालों को सुनाओ तो वो कहेंगे हाँ भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है जो तुमको उठाता है, लेकिन हम कहते हैं बैठा है खाली, क्योंकि बाबा ने कहा है अमृत वेले मेरा रूप भोलेनाथ का रूप होता है और अमृत वेले मेरा रूप पिता का रूप होता है, और दुनिया में सबसे भोला पिता ही होता है। सारा जीवन मेहनत करता है, खटता है, और अंत में फिर सारी कमाई दे करके खुश होके जाता है, दुखी होके नहीं जाता। उसको खुशी होती है कि शुक्र है किसी ने मेरी कमाई ली तो सही, पकड़ी तो सही। तो बाबा भी कहते हैं सुबह सुबह मैं भोलानाथ बन करके बैठता हूँ, कोई हिसाब नहीं रखता, गिनती नहीं रखता, कोई ताला कुंजी नहीं होती है, जिस बच्चे को जो चाहिए वो मेरे से ले सकता है। जो 3 बजे उठे वो है महायोगी, 4 बजे उठे वो योगी, और 5 बजे उठे वो जोगी। जोगी माना भगत। तो 5 बजे से भक्तों की लाइन शुरू होती है, इससे पहले बच्चों की लाइन थी, बच्चे थोड़े ही हैं, तो थोड़े बच्चों को बाबा शांति से निपटाता है, और बच्चों के बाद जो लाइन लगती है उसमें कई करोड़ लोग। अब भारत में ही देखो ना, 123 करोड़ में से बच्चे तो कुछ लाख हैं, बाकी सब कौन है? सबसे ज्यादा भगत भारत में ही है, 5 लाख गांव है, एक गांव में एक भी मंदिर हो तो 5 लाख मंदिर तो ये हो गए, बाकी कई हजार शहर हैं, एक शहर में तो कई कई मंदिर होते हैं। तो सुबह सुबह सारे मंदिरों में भक्त पहुंच जाते हैं, कहीं 2 कहीं 4 कहीं 20 50। तो 5 बजे के बाद भक्तों की लाइन शुरू हो जाती, उससे पहले बच्चों की। बच्चे को कितना मिलता है और भक्त को कितना मिलता है? बच्चे को तो मांगे उससे भी ज्यादा मिलता है, और भगत जितना मांगे उससे भी कम मिलता है। अब कोई भगत वाली लाइन में लगेगा तो उसे कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा ना, इसलिए बच्चे वाली लाइन में लगना। और उस समय बाबा ने कहा, बाबा बिल्कुल फ्री होता है, कोई पुकारता नहीं, कोई चिल्लाता नहीं, सब सोए पड़े रहते। अब लौकिक में भी आपने देखा होगा, बच्चे को कोई चीज चाहिए तो वो देखता है कि अभी सुबह सुबह तो मेरा पिता नाश्ता कर रहा है, तो सोचेगा नाश्ते के बाद बात करूं, फिर देखेगा वो तो किसी को मोबाइल पे बिजी हो गया, फिर देखेगा अपनी गाड़ी पोछने लगा, फिर देखेगा चौकीदार को कोई डायरेक्शन दे रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है कि जब ये बिल्कुल खाली हो तब मैं इसके पास जाऊं, खाली होगा तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा, खाली नहीं होगा तो कहेगा ठहर जा बेटा थोड़ी देर में बताना, ये काम कर लूं फिर बात करना। तो बाबा भी सबसे ज्यादा खाली कब होते? अमृत वेले बाबा सबसे ज्यादा खाली होते। तो बच्चा क्या करता है, जैसे बाप खाली बैठा होता है ना अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी, तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाके गोद में बैठेगा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराएगा और फिर कहेगा पापा मेरे को ये चीज चाहिए, तो उस समय उसे जरूर मिल जाएगी। तो ऐसे ही सुबह सुबह हम भी जो मांगेंगे वो बाबा से मिलेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अमृत वेले जिसको जो भी पाप बख्शवाना हो तो मैं बख्श दूंगा। ऐसे तो मुरली में बाबा कहता है जो तुमने कर लिया उसकी माफी नहीं हो सकती, हाँ सावधानी मिल जाएगी आगे के लिए, या आधा माफ कर दूंगा सारा नहीं माफ करूंगा। उस दिन तो बाबा ने कहा माफी वाफी कुछ नहीं होती, रजिस्टर में दाग पड़ जाता है, ऐसे भी बोलती। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि अमृत वेले अगर कोई बच्चा आएगा तो उस बच्चे को मैं उसका मैं पाप बख्श दूंगा। मान लीजिए कोई ऐसी आत्मा है जिसने अज्ञान काल में बहुत पाप किए, बहुत क्रोध किया, कईयों का जी दुखाया, कईयों पे हिंसा की, अब वो योग में बैठता है तो उसको याद आता है मैंने ये पाप कर्म किया, योग नहीं लगता है। तो पाप कर्म को याद करता रहेगा तो कैसे वो बाबा का लायक बच्चा बनेगा, वो पाप कर्म भी तो भूलना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा मैं वो पाप बख्श दूंगा, तो आप अमृत वेले बाबा के सामने जाके बैठो, बाबा को बताओ कि मैंने ये गलती की, ये पाप किया, ये विकर्म किया। और फिर जब आप बाबा के सामने बैठोगे तो बाबा की ऐसी रेजीज आएंगी, वो रेजीज आपके उस पाप को धो डालेंगी, पहले उसको धुंधला करेंगी और फिर उसको धो डालेंगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था मैं शॉक अब्जॉर्बर हूँ, दुख चूसने वाला हूँ, जैसे वाटर अब्जॉर्बर होते हैं, इंक अब्जॉर्बर होते हैं, स्याही गिर गई उसके ऊपर डाल दो चूस जाएंगे, पानी गिर गया उसके ऊपर डाल दो पानी चूस, स्याही चूस, ऐसे बाबा है पाप चूस। दुनिया में आपने जहर चूसने वाले लोग देखे होंगे, किसी को सांप काट गया तो वो आता है और जहर चूस के चला जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन पाप चूसने वाला केवल बाबा है, मैं बच्चों के पाप खत्म कर देता हूँ। लेकिन ये काम बाबा अमृत वेले करता है। तो अगर आप बाबा को बताएंगे कि मेरे को विचार आता है, मुझे ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, तो वो खत्म करेगा। फिर बाबा ने कहा अगर किसी बच्चे में कोई कमजोरी है तो वो कहता है बाबा मेरे को ज्ञान तो सारा है पर मैं चार लोगों के आगे जबानी नहीं खोल सकता, ये भी कमजोरी है, तो आप अगर अपनी ये कमजोरी बताएंगे तो बाबा आपको वाक पटुता देगा, वाक बल देगा, वाक शक्ति देगा, और आप चार के आगे क्या 4,000 के आगे भी बोल सकेंगे। अगर कोई कहता है बाबा मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है, तो बाबा उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा अमृत वेले। और अगर कोई कहे मैं ये बात भूल नहीं पाता हूँ तो बाबा भूलने की शक्ति भी देगा। जैसे आजकल एक मशीन होती है जिसमें एक बटन दबाओ ठंडा पानी, दूसरा दबाओ नॉर्मल पानी, तीसरा दबाओ तो गर्म पानी। तो साइंस की दुनिया में तो बटन दबाना पड़ता है और साइलेंस की दुनिया में केवल संकल्प करना पड़ता है, बस संकल्प ही बटन। आप जो संकल्प करेंगे वही चीज हाजिर हो जाएगी। आप बाबा के सामने जाके कहेंगे मेरे को डर बहुत लगता है, तो निर्भयता का संकल्प करेंगे निर्भयता आ जाएगी। आप कहेंगे मेरे को देह अभिमान बहुत रहता है, ईगो बहुत आता है, अभिमान बहुत आता है, तो उसकी भी बाबा ऐसी रेजिस देंगे कि हमारा अभिमान कम हो जाएगा, ईगो कम होते होते खत्म हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हमें क्रोध बहुत आता है तो उसके लिए भी हमने संकल्प किया और बाबा हमें ऐसी रेजिस देंगे, हमें लगेगा कि हम शांति से भर गए और दिन भर क्रोध आएगा ही नहीं। जब भी क्रोध का कोई मामला आएगा तो आपको अमृत वेवल दृश्य याद आएगा। बाबा ने मुझे कितना शांति से भरा, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा, क्रोध आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने अमृत वेले की छूट दे रखी है। उस समय हिसाब किताब नहीं होता, ये 50 साल पुराना, ये 5 साल पुराना, ये महारथी है और ये प्यादा है, ऐसा हिसाब किताब नहीं होता। बाबा खुले दिल से बांटते। जैसे आपने पुराने जमाने में कहानियां सुनी होंगी, एक राजा था तो वो घोषणा करता था, भाई मैं 10 से 12 के बीच में जिसको जो चाहिए वो दूंगा। तो वो सब चीजें लेके बैठता था दरबार में और लोगों की लाइन लग जाती थी। अब एक आके कहता है मुझे मोहरें चाहिए सोने की, दूसरा कहता है अनाज चाहिए, तीसरा कहता है मेरा घर नहीं है मुझे घर बनवा दो, चौथा कहता है मुझे खेत दे दो उसमें मैं खेती करके कमा के खा सकूं, इस तरह से। तो राजा अगर 12 बजे तक बैठा तो अपने नौकरों को कहता रहेगा भाई दे दो इसको, ये भी दे दो, ये भी दे दो। फिर 12 बजे उठ गया, अब कोई थोड़ा थोड़ा आया, मेरे को एक बोरी अनाज चाहिए, तो नौकर सामान समेट रहे होते हैं, वो क्या कहेंगे भाई हम तुमको 5 किलो तो दे देंगे, एक बोरी चाहिए तो फिर कल आना। तो अमृत वेले शाहों का शाह, सबको शाह बनाने वाला वो बाबा अपना भंडारा खोल के बैठता है। आपको क्या चाहिए, सूर्यवंशी का टिकट चाहिए, चंद्रवंशी का चाहिए, कौन सा पद चाहिए, वो भी बाबा देगा। पर आप बाबा से लेने वाले बनो। देने वाला भंडारा खोल के बैठा है और लेने वाला लेता ही नहीं। लेना किससे होता है, मन से। इस भौतिक जगत में हम किसी चीज को हाथ से लेते हैं, और हाथ अगर ऐसे हिल रहा हो, कोई चीज डाले और हाथ ऐसे हिल रहा है तो नीचे ही गिर जाएगी। टोली लेते समय क्या करते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, हाथ को ऐसे हिलाए तो टोली नीचे ही गिर जाएगी। तो बाबा किसको देता है, तो कोई चीज अपने को लेनी है और हाथ हिल रहा है तो चीज नीचे गिर जाएगी। और बाबा वरदान देता है मन बुद्धि में। अब मन भी हिल रहा है, बुद्धि भी हिल रही है, स्थिर नहीं है, तो क्या होगा, वरदान कहाँ दे। हिलती हुई चीज में थोड़ी कोई चीज डाली जाती। और दूसरी बात, जैसे मोबाइल से बात करते हैं, तो अगर हमारा मोबाइल एक जगह एंगेज हो तो दूसरा कोई कॉल करना चाहे तो अपन कर सकते हैं क्या, उसको कैच करेंगे क्या, इधर से भी आवाज जाएगी सब्सक्राइबर इज एंगेज्ड, भाई ये एंगेज है थोड़ी देर बाद करना, एंगेज आ रहा है थोड़ी देर बाद बात करना। तो अगर हमारा मन एंगेज है किसी और के साथ, किसी वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ जुड़ा पड़ा है, और उधर से जी बाबा वरदान डालना चाहता है तो कैसे डालेगा, खाली तो है ही नहीं, मन किसी और के साथ जुटा पड़ा है। तो मन खाली चाहिए, ब्लैंक, जैसे कोरे कागज पे बढ़िया लिखा जाता है ऐसे ही ब्लैंक माइंड, खाली। और मन खाली कब होता है, जब अपन स्वरूपस्थ होते हैं, जब हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं तो मन खाली हो जाता है। जैसे ही देह अभिमान में आते हैं तो देह की स्मृतियों से मन भर जाता है। इसलिए अमृत वेले अपने आत्म स्वरूप में हम उठें, लेकिन अमृत वेले की शुरुआत तो रात को होती है। अब जैसे मान लो अपने को यहाँ से दिल्ली जाना हो, सुबह सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी में अपने को दिल्ली जाना है, तो तैयारी कब करके सोएंगे, तैयारी कब करेंगे, तैयारी तो रात को करेंगे। डीजल डालो, पेट्रोल डालो, बैग में 2 जोड़ी कपड़े डालो, पानी की बोतल भरो, कोई फल फ्रूट रखो सफर में काम आए। 4 बजे आपको चलना है और आप 4 बजे तैयारी में लग गए तो चलोगे कब, रात को चाहिए ना, तो अमृत वेले की भी तैयारी कब होती है? वो भी रात को होती है। दिल्ली तो यहाँ से 700 किलोमीटर है, लेकिन अपने को तो परम धाम जाना है, कितना किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, अनगिनत, गिनती ही नहीं। तो इतना दूर जाना है तो उसकी तैयारी रात को, और रात की भी तैयारी का आधार क्या है? दिन भर हमने क्या कर्म किया, कैसी दिनचर्या थी, कैसा व्यवहार किया, कर्म योगी थे या कर्म बंधन में फंसे थे, इसके आधार पे हम रात की तैयारी करेंगे और रात के आधार पे अमृत वेला होगा। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले बातें बंद कर दो, और बाबा ने ये भी कहा था सोने के कमरे में बातें मत करो, नहीं तो वो बातों का जो वाइब्रेशन है ना वो कमरे के अंदर फैल जाता है, फिर जब आप सुबह उठते हो तो फिर बातें याद आती। और आधा घंटा पहले बातें बंद कर दी, मौन हो गए, साइलेंस में चले गए, स्वरूपस्थ हो गए, साइलेंस का अनुभव किया, साइलेंस के वाइब्रेशन कमरे में फैलाए आधा घंटा पहले, तो आप साइलेंस में सोए और फिर साइलेंस में ही उठेंगे, उठते ही फिर वही स्थिति, अंतमति सोगति, उठते ही आपकी वही स्थिति होगी। या तो कुछ पढ़ो बाबा की कोई बात किताब, या फिर मनन करो, ध्यान में बैठो। अगर मान लो फोन आ भी जाए तो बाबा ने कहा कमरे से बाहर जाकर के बात करो, कमरे के अंदर नहीं। बाबा ने ये भी कहा था कि कई बच्चे शिकायत करते हैं कि बाबा सपना अच्छा नहीं आया, तो बाबा ने कहा था जब आप फरमान का पालन नहीं करते तो आपका अरमान पूरा नहीं होता है। तो फरमान क्या है? बातें करते करते नहीं सोना, जहां बात है वहां बाप नहीं है, बाप किनारा कर लेता है। और सोना भी कैसे, वो भी बाबा ने विधि सिखाई, बिंदु बन करके बाप के साथ सो, जैसे बच्चा होता है ना लाडला, वो माँ बाप के साथ सोता है। तो हमारा बाबा कितना मीठा और उसके कितने लाडले बच्चे हैं, अकेले नहीं सो। बाबा ने कहा बच्चे अकेले सोते हैं तो माया डराने आ जाती है, और बच्चा माँ बाप के साथ सोए तो कोई नहीं डराता है। अब जो अमृत वेले का बाबा का स्वरूप है वो तो पिता का स्वरूप है, लेकिन उसके बाद कौन सा स्वरूप शुरू होता है? टीचर का। और टीचर के स्वरूप में और बाप के स्वरूप में बहुत अंतर होता है। अब देखो आप बाप के सामने तो पांव लंबे करके बैठ जाओ, टीचर के सामने नॉट अलाउड, और बाप के सामने तो आप रूठ जाओ, जिद कर लो मेरे को ये चीज लेनी है। टीचर के सामने रूठा हुआ बच्चा भी मन जाएगा टीचर को देखते ही, रोता हुआ भी चुप हो जाएगा टीचर आ गया। और देखो बाप का तो कभी वो बाल पकड़ लेता है, कभी जेब में हाथ डाल देता है, टीचर की तो कुर्सी से भी थोड़ा फुट दो फुट दूर खड़ा होता है, नजदीक नहीं जाता, हाथ भी नहीं लगाएगा चेयर को। तो टीचर माने डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा। तो फिर हम मर्यादा पूर्ण रीति से ड्रेसअप होकर के लाइन में बाबा की क्लास में आते हैं। बाबा पढ़ाते तो एक ही घंटा है, दुनिया के स्कूल खुले नहीं उससे पहले हमारा स्कूल बंद हो जाता है, और बाबा पढ़ाते भी बहुत सरल भाषा में, दुनिया की पढ़ाई तो बहुत डिफिकल्ट होती है, और बाबा पढ़ाते भी केवल 3-4 पेज ही हैं, दुनिया में तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और ये तो फिर भी बड़ा सा हॉल है, लेकिन सेंटरों पे जहां हम पढ़ते हैं वहां तो 12-15-20-50 बैठे होते हैं, छोटा सा हॉल होता है, कोई बहुत फैसिलिटी भी नहीं होती, आधे से ज्यादा पट में भी बैठे होते हैं। लेकिन पढ़ाई कितनी ऊंची है, मान लीजिए लौकिक दुनिया में कोई व्यक्ति पढ़ करके आईएएस बन जाए। आईएएस बनने में उसको 30 साल लग गए और आईएएस बनने के बाद 30 साल नौकरी करेगा क्योंकि 60 में तो रिटायर हो जाएगी। और आगे मान लीजिए 10 साल 20 साल और रह लिया तो 30 साल की पढ़ाई का फल मिला केवल मैक्सिमम 50 साल, इतना ही ना। अब 50 साल में उसने 2-4 करोड़ की बढ़िया कोठी बनाई, 2 करोड़ की बढ़िया कोठी बनाई, अब शरीर छोड़ दिया, अब अगले जन्म में जाके वो ये थोड़े कह सकता है मैं पिछले जन्म का आईएएस हूँ, मेरे को फिर से वही डिग्री दे दो। रात गई बात गई, अब फिर पढ़ो। और फिर भी पढ़ेगा तब बाबा ने कहा ना, जो विद्या का दान करेगा उसे अगले जन्म में अच्छी विद्या आएगी। इस जन्म में दान किया होगा तो आएगी, नहीं तो क्या पता अगले जन्म में पढ़ने का माहौल है कि नहीं। और जो उसने 2 करोड़ की कोठी बनाई थी, अगले जन्म में जाके कह सकता है कि मेरे को उसी में रहने दो, वो मैं बना के आया हूँ। क्या पता अगला जन्म उसका कैसे घर में होता है, इस जन्म में उसने कैसे कर्म कमाए, उस आधार पे गरीब घर में भी हो सकता है, छोटे से घर में कच्चे से घर में भी हो सकता है। तो बस 30 साल इतनी किताबें पढ़ी, आंखों पे मोटा सा चश्मा चढ़ गया और फिर फल मिला एक जन्म। अब देखो श्री बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाता है, 1 घंटा 4 पेज की मुरली है, ना कोई डंडा ना कोई आंख दिखाता ना कोई फीस मांगता ना कोई तनाव वाली पढ़ाई, कंपटीशन नहीं, प्यार प्यार की पढ़ाई। अब इसको पढ़ के हम देवता बन गए, सतयुग में गए, पहले जन्म में देवता बने, शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद क्या होगा, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। पहले जन्म में भी सोने का महल था, अगले जन्म में फिर सोने का महल मिलेगा। पहले जन्म में भी देवता थे, अगले जन्म में फिर देवता, फिर शरीर छूटा फिर देवता, फिर शरीर छूटा फिर देवता। ये तो नहीं कि एक शरीर छूटने के बाद जाओ फिर मुरली पढ़ो फिर ज्ञान योग करके आओ फिर देवता बनाएंगे, नहीं। एक बार बन गए तो 21 जन्म चलेगा। और 21 जन्म में भी बाबा ने कहा ये तो डायरेक्ट 21 जन्म, लेकिन बाद में इनडायरेक्ट द्वापर और कलयुग में भी वो वर्षा गुप्त रूप में चलेगी। तो पढ़ाने वाला गुप्त, पढ़ाई गुप्त और उसकी प्रारब्ध भी गुप्त, देखने में साधारण। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा क्या करे जिससे बाबा वो थोड़ा लगे कुछ, आप बच्चे ही बताओ, बाबा तो बहुत साधारण है। सचमुच बाबा तो बहुत साधारण है, दुनिया में तो एक एक लेक्चरर प्रोफेसर, क्या उसका सूट बूट बाल टाई जूता गाड़ी क्या उसकी होती है, बाबा तो बहुत साधारण है हमारा टीचर। लेकिन पढ़ाई ऊंचे से ऊंची, जिससे ऊंची कुछ नहीं, 2 ताज वाला राजा बना देता है पढ़ा करके। तो ये टीचर का पार्ट पूरा हो गया, मुरली पूरी हुई, अब किसका पार्ट चालू होगा, सतगुरु का पार्ट चालू होगा। और सतगुरु का पार्ट तो टीचर से भी ज्यादा मुश्किल होता है, टीचर तो फिर भी एक बार आंख दिखाएगा, लेकिन सतगुरु की नजरों से गिरा तो ठोरी नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम कर्म योगी बनते हैं तो हमको सतगुरु को सामने रखना है, मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मेरे सतगुरु को अच्छा नहीं लगे। तो बाबा ने कर्म करने की विधि क्या सिखाई, ट्रस्टी बन के कर्म करो, निमित्त भाव से कर्म करो, न्यारे होके कर्म करो, हल्के होके कर्म करो, कर्म करते खुश रहो, भारी मत हो, चिड़चिड़ाओ मत, बाबा की याद में कर्म करो, ऐसे कर्म करने। जैसे आपने देखा होगा हमारी बहनें रसोई में काम करती हैं ना, तो जो गरम भगोना होता है, गरम पतीला होता है, उसको कपड़े से पकड़ती हैं, या फिर एक संडासी या पकड़ आता है उससे पकड़ती हैं। भाई सीधा क्यों नहीं पकड़ते, जब ठंडा था तब तो आपने ऐसे रख दिया था, अब जब उसमें पानी गर्म हो गया, भगोना गर्म हो गया, तब आप कपड़े से पकड़ोगे उसको। कपड़ा बीच में क्यों रखा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे, लाल लाल बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं। तो जैसे गर्म चीज को सीधा पकड़ो तो हाथ जल जाते, तो कर्म को भी सीधा पकड़ो तो कर्म बंधन बन जाता है। तो बीच में किसको रखना है, बाबा। मुरली सुन के गए, अब नाश्ता बनाना है, तो किसको बीच में रखना है, बाबा का भंडारा, बाबा के बच्चे और मैं हूँ सेवाधारी। निमित्त बन के बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, बाबा के लिए और बाबा के बच्चों के लिए। भोलेनाथ आप भी आना, आपका ही भंडारा है, आप भी आना, पहले आपका आना, फिर आप अपने बच्चों को खिलाना। आओ भोले बाबा, मैं और आप दोनों मिलके बनाएंगे, कितना स्वादिष्ट बनेगा। मान लो कोई आपसे जोर से आके बोलता है, मेरे को देरी हो रही है, तुम रोज ही मुरली में देरी कर देती हो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप मुस्कुराते हुए क्या कहोगे, बस दो मिनट में, बस ये लो, ये मिला, बाबा की याद है ना। तो सतगुरु हमें डिटैच रहना सिखाता है, न्यारे रहो, फंसो नहीं, फंसोगे मेरापन आएगा तो अभिमान भी आएगा, क्रोध भी आएगा। न्यारे रहोगे, डिटैच रहोगे तो नम्र भी रहोगे और शांत स्वरूप बन के भी रहोगे। तो अगर हम सारा दिन जो वैरायटी कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करें, खुशी खुशी से करें, सबको सुखदेव बन करके सबको सुख दें, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, थोड़ी थोड़ी देर में शरीरी स्थिति बना लें, फिर कर्म में लग जाएं, थोड़ी देर में फिर मुरली दोहरा लें, फिर कर्म में लग जाएं। तो अगर ऐसे हमने कर्म किया तो हमको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ किया भी, क्योंकि आत्मा न्यारी और प्यारी है, फंसी ही नहीं। और ऐसे हम कर्म करते हैं तो शिव बाबा सतगुरु दुआ देता है, वाह बच्चे वाह, क्या सुंदर विधि से कर्म किया, जो मैंने सिखाया उसी विधि से कर्म किया। और अगर हम ऐसे कर्म नहीं करते तो बाबा को भी थोड़ा थोड़ा रहम आता है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा अभी सीखेगा, इसको अभी और भी सीखना। तो और जब सारा दिन ऐसे कर्म करेंगे तो शाम को जो बाबा ने कहा 7 से 7:30 भी योग बहुत जरूरी। दादी जानकी कहती है जो शाम का योग नहीं करता वो फरिश्ता नहीं बन सकता, तो वो भी जरूरी। तो दिन भर अगर ऐसी स्थिति रही तो शाम का योग कैसा होगा। बाबा ने कहा था नुमा शाम के समय अंतवाहक शरीर से चक्र लगाओ। जैसे आपने समाचार सुना होगा, थोड़े दिन पहले तो भूकंप आया नेपाल में और अभी उत्तराखंड में बड़ी बाढ़ आई हुई है, थोड़ी थोड़ी बाढ़ आसाम में भी आई हुई है, गुजरात में भी थोड़ी बाढ़ आई एक दो डिस्ट्रिक्ट में। तो जब बाढ़ आती है तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं सेना के, गवर्नमेंट के, वो ऊपर से पैकेट बरसाते हैं, पानी के बीच में लोग खड़े हैं या कहीं गड्ढे में हैं या कहीं ऊंचे टिल्ले पे बैठे हैं, कुछ खाने को नहीं है, चारों तरफ पानी भर गया, तो वो ऐसे पैकेट देते हैं ताकि वो जिंदा रहे। तो बाबा ने कहा था नुमा शाम के समय अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाओ, और जो सुख शांति के भूखे प्यासे हैं उनको भी क्या करो, पैकेट दो, क्योंकि बाढ़ भूकंप तो कभी कभी आते हैं, ये पैकेट तो कभी कभी बांटने पड़ते, लेकिन जो सुख शांति वाले पैकेट है वो तो रोज ही बांटने पड़ेंगे, तो रोज ही चाहिए। तो शाम का योग भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई एक मुरली में, मन को खाली करके सो अर्थात जो भी कुछ है वो बाबा को समर्पित कर दो। जैसे पहले जमाने में रात को सारे बर्तन मांझ करके सोते थे, जूठे बर्तन नहीं रखते थे। ये तो आजकल थोड़ा प्रथा हो गई है, भाई सुबह आएगी माई तो मांझिएगी, नहीं तो लोग बिल्कुल चम्मच तक भी मांझ के। वो ये कहते थे कि अगर घर में जूठे बर्तन पड़े हों तो लक्ष्मी नहीं आती, देवता नहीं आते। और फिर सुबह सुबह आप जूठे बर्तनों में हाथ डालो, सुबह सुबह ही झूठ शुरू हो गई, तो कम से कम सुबह सुबह तो बढ़िया चीज को हाथ लगे ना। तो बाबा भी कहते देखो ये भी आपका बर्तन है, ये बर्तन है ना, कितना बढ़िया बर्तन है, इस बर्तन में सारा दिन कितनी चीजें डालते हैं, एक ही बर्तन है। पांच छह बर्तन हो तो चलो दलिया इसमें डाला, दाल इसमें डाली, खिचड़ी इसमें डाली, कढ़ी इसमें डाली, लेकिन हमारे पास तो बर्तन ही एक है। इस एक बर्तन में कितनी चीजें डालते हैं सुबह से, किसी ने नमकीन बात कही वो भी डाल ली, किसी ने मीठी बात कही वो भी डाल ली, किसी ने कड़वी बात कही वो भी डाल ली, किसी ने चरचरी बात कही वो भी डाल ली, किसी ने फीकी फीकी बात कही वो भी डाल ली, बहुत तरह की बातें इस एक ही बर्तन में डलती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन उनका असर तो रहता है ना। और हम ऐसे ही बर्तन को लेके सो गए जिसको हमने धोया नहीं, जिसमें सब तरह की बातों का असर है, और सुबह उसी को जिसमें कई तरह की बातें डली हुई हैं, खट्टी मीठी फीकी नमकीन चरचरी, उसको लेके भगवान के सामने गई, वरदान डालो बाबा इसमें वरदान डालो, तो बाबा क्या कहेगा, क्या कहेगा, पहले इसे साफ करो। आप कहते हो अच्छा लाओ अभी साफ कर लेती हूँ, तो अमृत वेला सारा किसमें गया, साफ करने में चला गया। अब साफ हुआ तब तक तो बाबा भक्तों के पास चला गए। इसलिए रात को साफ करके सो, तो सुबह देखो बाबा आपकी झोली वरदानों से भर देंगे। तो यहाँ आप सब बाबा से वरदान लेने आए हो, बाबा ने आपको वरदान देने के लिए बुलाया है। यूं तो बाबा रोज ही वरदान देते हैं, लेकिन संगठन में इतने बड़े संगठन में हमको कितने वरदान मिलेंगे। बड़ा संगठन होता है ना तो बाबा भी बड़े बड़े वरदान देता है, बहुत बच्चे आए हैं तो बाबा का भी एक्स्ट्रा अटेंशन हो जाता है। तो क्या करेंगे, सुबह कितने बजे उठ के आएंगे बाबा के पास, सभी आएंगे ना, इसलिए हाँ हाथ खड़े करो जरा कौन कौन आएंगे। देखो भाई बाबा भी खुश हो गए हैं आप सबकी लगन देख करके। और ये आप ध्यान रखना कि यहाँ से जाकर के अभी बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब कमरे में मान लो चार बहनें हैं, अब एक बहन तो पक्की है कि मेरे को बात नहीं करनी है, बाकी तीन वो थोड़ी सोचती हैं एक कर लेते हैं, तो उन तीन के कारण उस एक को भी डिस्टर्बेंस होती है, तो वो भी बोझ किस पे आएगा, वो भी फिर हमारे पे आएगा। इसलिए हमें दूसरों को सहयोग देना है, जो चुप रह रहा है, जो योग युक्त है, जो अपनी स्थिति बना रहा है, क्योंकि हम सब कैसी कैसी परिस्थितियों में से निकल के आते हैं। कोई तो बांधेली बैठी होगी बड़ी मुश्किल से बहाने लगा के आई होगी, कोई ने साल भर पैसा इकट्ठा किया होगा तब जाके टिकट लायक पैसा इकट्ठा हुआ होगा, कोई अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आई होगी, कोई अपने घर में किसी बहन बेटी को बुला के आई होगी, चार दिन मेरे बच्चों का खाना बना देना मैं भट्टी करके आऊं, तो हरेक ने बड़ा मुश्किल से समय निकाला है, तो उस समय का हमको 100% फायदा उठाना है। इसलिए एक दो को सहयोग देना है ताकि एक दो को हम आगे बढ़ाएं, और एक दो को सहयोग देंगे तो हमें खुद भी सहयोग मिलेगा। तो मौन में जाएंगे और मौन में ही बाबा की गोदी में सो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बच्चे मेरे पास सुबह सुबह आते हैं ना तो मैं बच्चों को तीन वरदान देता हूँ। पहला वरदान जब बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं तो बाबा विजय का तिलक लगाता है, विजयी भव, गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो तिलक कैसे लगेगा। फिर दूसरा वरदान बाबा देते हैं, बालक सो मालिक भाव, मेरी सारी शक्तियों के मालिक बन जाओ। और तीसरा वरदान देते हैं, बाप समान भाव। अगर अमृत वेले बाप समान भाव का वरदान नहीं लिया तो बाप समान भाव होगा कैसे। और इस एक वरदान में बाकी सारे वरदान समाये हुए हैं। तो हमको हर रोज ये तीनों वरदान उठते ही मिलते और ये तीनों वरदान सारा दिन हमारे साथ रहते हैं। और इन तीनों वरदानों से जो आत्मा सुसज्जित है, माया उसके नजदीक आ ही नहीं सकती, आंख उठा के ही नहीं देख सकती। तो बाबा जैसे सुबह सुबह हमको कवच पहना देते हैं, माया प्रूफ कवच, माया प्रूफ जैकेट, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, कितनी भी गोली आए बुलेट पहन ली आपको गोली नहीं लगेगी, ऐसे ही बाबा भी सुबह सुबह माया प्रूफ जैकेट पहना देती, कितनी भी माया आए आपको प्रभाव नहीं डालेगी। तो कल सुबह हम बाबा से ऐसी जैकेट पहनेंगे और वरदान भी लेंगे, तिलक भी लगवाएंगे। और बाबा ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह बाबा बच्चों को बहुत लाड़ प्यार और दुलार देते हैं। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें लाड़ प्यार दुलार तो चाहिए ना, कि बड़ों को नहीं चाहिए, केवल छोटों को ही चाहिए, सबको चाहिए, बाबा के तो सब बच्चे। तो सुबह सुबह बाबा बहुत दुलार देता है, प्यार देता है, लाड़ करता है, महिमा करता है। इसलिए कल सुबह हम बाबा से प्यार भी लेंगे, वरदान भी लेंगे, कवच भी पहनेंगे, बहुत प्राप्तियां करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ ओम शांति।